हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय दो, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 66। इन श्लोकों में भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति अयुक्त रहता है, भगवान की सेवा नहीं करता, वो व्यक्ति कैसे किन तकलीफों से गुजरता है। तो जरा देखिएगा 66। नास्ति युग बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो भगवान यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहा है और साथ ही साथ युक्त नहीं है, उम्मीद है कि युक्त का अर्थ आप समझते होंगे। युक्त का अर्थ है जिसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं, ये युक्त का अर्थ होता है। युक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। तो इस बात को पूरी भगवद्गीता में हमें याद रखना चाहिए डिस्कशंस में, कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है और पूर्ण कृपा प्राप्त करके वो अनुभव भी करता है, एक्सपीरियंशियल रूप से अनुभव गम्य हो जाता है उसके लिए कि भक्ति का सुख क्या है, भगवान की सेवा करने में किस शांति का, किस सुख का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति को वो अनुभव होता है। और यदि कोई इस प्रकार से उसकी उसका बुद्धि स्थिर नहीं है, अब स्थिरता का मतलब क्या है, बुद्धि के द्वारा हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं तो मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और मन का कार्य क्या है, इंद्रियों का संचालन करना। तो जब बुद्धि निर्णय ले लेती है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, माया की सेवा करके मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, तो फिर इस निश्चयात्मक बुद्धि के संग व्यक्ति लगातार युक्त रहता है। तो सारी बात संबंध ज्ञान से शुरू होती है, जो कि पहली लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में भगवान से अपने संबंध का अनुभव नहीं करता है, समझता नहीं है, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि लगे उसके अनुसार हम सोचेंगे ये अच्छा है, नहीं कुछ समय बाद सोचेंगे वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इन सब बातों से विरत होकर के केवल बुद्धि में ही बात आनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि मैं उनका शाश्वत अंश हूँ। तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः पांचवें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। और मन का प्राय लक्ष्य क्या होता है, इंद्र तृप्ति, और इंद्र तृप्ति का कोई अंत नहीं है, इंद्र तृप्ति का कोई अंत नहीं है और इंद्र तृप्ति से कोई संतुष्टि नहीं है, दोनों बातें होनी समझ में आनी चाहिए। भक्ति का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन भक्ति का सुख का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन इंद्र तृप्ति से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, तो इस कारण से मन अशांत रहता है। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। आप अपने जीवन में विचार करें, अगर आप साधना कर रहे हैं, कि भक्त के जीवन में बड़ा एक सुंदर लक्ष्य है, एक सुंदर स्ट्रगल है, और स्ट्रगल क्या है, मैं अपने मन को कैसे कृष्ण में लगातार लगाए रख सकूं। ठंडे दिमाग से सोचिए तो एक भक्त के जीवन में और कोई कार्य नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं, केवल एकमात्र उद्देश्य है बार बार अपनी इंद्रियों को मैं कैसे, अपने मन को कैसे भगवान में नियोजित रख सकूं, और कुछ नहीं चाहता भक्त एक्चुअली, और कोई भक्त को कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मन और इंद्रिय कहीं उधर जा रही हैं, वापस उठाकर भगवान को मैं केंद्रित करना, और जितने भी सारे कार्य हैं वो उसी के लिए हैं। सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव कंकरः, हमेशा भगवान का कृष्ण भगवान का स्मरण कर सकूं और उनका उनको विस्मृति कभी नहीं हो, सारे नियमों का पालन करने का उद्देश्य यही है। तो अब देखें कि हमें एक लक्ष्य अभी ही मिल गया है। लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रेम प्राप्त करना तो है, लेकिन लक्ष्य ये है डे टू डे बेसिस, या कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस, या टाइम टू टाइम बेसिस, सेकंड टू सेकंड बेसिस में लक्ष्य यही है कि मुझे इस समय कृष्ण का स्मरण करना है, कृष्ण की सेवा में नियोजित अपने आप को रखना है, और इससे मन की चंचलता चली जाती है, क्योंकि मन जो है इस प्रक्रिया से शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा उस सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। बाहर रूप से कोई व्यक्ति कैसा लग रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वैसा अंदर से भी हो। इस जगत में हम इस बात का अनुभव बहुत बार करते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, इस श्लोक के आधार पर, शास्त्र के वचन कितने लाभकारी हैं, इस श्लोक के आधार पर किसी के कोई भी गुरु जी हों, कोई भी स्वामी जी हों, अगर हम देखते हैं कि इस प्रामाणिक कृष्ण के भक्त नहीं है, तो शांति का वो कितना भी ढोंग कर लें, मुस्कुराहट का कितना भी वो ढोंग कर लें, हमें यही विश्वास के संग हमें ये पहले से सोच लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अशांत है, और किसी कारण से किसी न किसी घृणित कार्य करने के लिए वो कभी भी प्रेरित हो सकता है। जो व्यक्ति सुखी है, शांत है, वो क्यों इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगेगा। इस बात को चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत। कोई व्यक्ति भोग चाहता है, कोई सिद्धि चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, सभी लोग शांत रहते हैं। जो कृष्ण का भक्त है बस वही निष्काम होता है, इस कारण से वो शांत हो जाता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण से के संबंध से ही हो सकती है। स्वयं प्रकट होने वाली क्यों है, क्योंकि हम गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सुनते हैं, भगवान के सेवक हैं हम, और जब हम सेवा में लग जाते हैं तो अपने आप ही हृदय में शांति का अनुभव करते हैं। सुख आने से पहले हमारा मन शांत होना चाहिए, और ये मन की निर्मलता का सूचक है। जो मन की चंचलता है, यही मन का मल है, और जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, मन की सफाई हो जाती है, तो मन का चंचलता अब भगवान में मन की स्थिरता के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और व्यक्ति सुखी हो जाता है। टेक्स्ट 67 को देखिए, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इस बात को भगवान ने पहले भी बताया था, प्रसन्न हरंती प्रसभम मनः। व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि मन को खींच ले जाती हैं। जैसे हम समुद्र में कभी हों, और समुद्र में जो हवाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, और नाव को भाग के किसी भी दिशा में लेके जा सकती हैं। अगर व्यक्ति को मालूम है कि आगे जाकर के बहुत खतरनाक आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो ऐसी जगहों में अपनी नाव को ना लेके जाए, ये बुद्धिमानी है। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है, माया के प्रभाव से उसकी इंद्रियां किसी भी डायरेक्शन में चली जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिसका क्योंकि इंद्रियां इधर उधर विचरण कर रही हैं, तो जहां भी वो विचरण करेंगे, जहां उनको विषय भोग प्राप्त होगा, बस वहीं पर वो हमारे मन को खींच के लेके चली जाएंगे। तो यही सब नुकसान किसको होगा, जिसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त नहीं है, लगी हुई नहीं है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है, भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रखना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का यही सही एवं सरल विधि है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ सीख सकते हैं अम्बरीश महाराज के जीवन से, कि राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। एक राजा को ही सारी इंद्रियों को तुष्ट करने की सारी सुविधा होती है, लेकिन क्यों वो बचे रहे, क्योंकि अभी सबने इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। इसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं पिछले के श्लोकों में, और इसी कारण से उनकी कोई भी इंद्रिय उनके मन को विचलित करने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये कार्य जो है ये इतना आसान है नहीं जितना कि हम सोचते हैं। इंद्रियों को या गोस्वामी बनना या स्वामी बनना, स्वामी का अर्थ है मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये सबसे मुश्किल कार्य है। और इसीलिए प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त कर ली है वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, क्योंकि बाकी सभी लोग अपने इंद्रियों के दास दास हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वो निश्चित रूप से सभी पूरे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। और जब तक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता है तब तक शिष्य बनाने की योग्यता उस व्यक्ति में नहीं है, ये भी समझ में आना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। इसके बारे में हमने चर्चा करी है कि इंद्रियों को दमन करना ये कृत्रिम प्रयास है और ये एक न एक दिन विफल जरूर होगा। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास परमाणु गुरु के प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति को इस कला को सीखना पड़ेगा। एक बार एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब क्या है। तब कहेंगे प्रश्न तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रश्न आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के कार्य भी समान इंद्रियों से करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये नहीं दिखता है कि भगवान की सेवा कैसे हो रही है। इसीलिए भगवान का विग्रह होने से हमें कितना लाभ है। भगवान के विग्रह के द्वारा, भगवद गीता के प्रचार के द्वारा, भगवान का नाम जप करके इस प्रकार से हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा होती है और सर्वश्रेष्ठ होता है सेवा होती है नाम उच्चारण के द्वारा, जिससे भगवत प्रेम बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो इसलिए इसके लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु या वैष्णव के आश्रम में रह करके भक्ति करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि मैं यानी हम अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, और फिर वो हमको मदद करते हैं। और फिर प्रभुपाद की असीम कृपा है, इन्हें सभी के लिए बताया है कि इस प्रकार से मंगल आरती करो, जप करो, भक्ति करो, भगवतम पढ़ो, प्रसाद खाओ और इस प्रकार की सेवाओं के द्वारा अपने दिव्य प्रेम को भगवान में जागृत करो। लेकिन अगर ऐसा है तो सारे लोग क्यों नहीं करते? सभी लोग, इतना सब कुछ आसान है, इतना कुछ सब कुछ लाभकारी है, भक्ति करने में कोई मुश्किल नहीं है, तो सब क्यों लोग क्यों नहीं करते, उसके बारे में हम चर्चा आगे के श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा।